नित्यम्
नारायणं
चैव नरोत्तमम्
देवीं
सरस्वतीं व्यास
ततो
जयमुदीरये अष्टत्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय पे हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं और स्वयं भगवान अपने कार्य से भी दिखाते हैं कौन कौन सी चीजें आवश्यक है। और अर्जुन भी प्रश्न करता है कि ठीक है सामान्य लोग तो कर लेते हैं, लेकिन महात्माओं को क्यों ये सारी चीजें करनी है? क्योंकि बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति संसार में रह नहीं सकता। तो फिर महात्मा भी जो है उनको भी क्यों कर्म करना पड़ता है? तो भगवान बताते कि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तर एवं इतरो जन सयत प्रमाणं गुरुते लोकस्तर अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो तात्पर्य बताता है कि सामान्य लोग को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता हो तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। दे सकता है? कुछ चोरी करने वाला अगर चोरी न करे इसके ऊपर भाषण दे तो क्या होगा? और आजकल वही तो हो रहा है, सारे भ्रष्ट लोग है वही सच्चाई के ऊपर भाषण देते हैं, सत्य में और जयते बोलते हैं। होता है सत्य की जय ही होती है लेकिन थोड़ा समय लगता है उसके लिए, क्योंकि अगर कुछ अच्छी चीज निकालनी हो कहीं से तो मंथन आवश्यक रहता है, उसके पश्चात ही कोई भी उत्तम चीज प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगर इस भौतिक जगत में अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी हो तो उसके लिए एक अच्छा शिक्षक भी होना चाहिए कि जो उसे सिखा सके। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि चंदन शैले शैले न माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे सारो न ही सर्वत्र चंदनम तो बने बने। कि हर एक जो शैल रहता है जिसके अंदर मोती मिलता है, समंदर के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको जिनक
बोलते हैं,
उसके अंदर फिर आपको मोती मिलता है।
मोती मिलता।
तो हर एक जिनक में मोती होता है क्या?
नहीं।
तो ढूंढना पड़ता है। मोती कम ना गजे गजे, हर एक हाथी के गंड स्थल में भी मोती नहीं होता और हर चंदन में हर जंगल में चंदन होता है, होता है लेकिन ढूंढना पड़ता है। तो उसी प्रकार से इस जगत में साधुओं की संगति है। हर जगह पे हर चौराहे पे आपको साधु नहीं मिलेगा, मिलेगा आजकल तो सारे टपोरी लोग मिल जाते हैं, चौराहे उनका ठिकाना है। तो साधु को भी ढूंढने के लिए कष्ट करने पड़ते हैं क्योंकि ऐसे साधुओं का आचरण ही हमें शिक्षा प्रदान करता है, उनकी शिक्षा से हम सीख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। जैसे एक साधु था और वह किसी को भी कुछ कहता था तो लोग बहुत गंभीरता से उसे अपने जीवन में उतार लेते थे। तो एक दादी अपने पोते को लेके उस साधु के पास पहुंची। साधु को बोली कि मेरा बच्चा जो है बहुत गुड़ खाता है, अब इसको थोड़ा बताइए ना कि इतना गुड़ खाएगा तो बीमार हो जाएगा, थोड़ा समझाइए उसको। साधु बोलते ठीक है, अब 7 दिन के बाद मैं बताता हूँ। बुढ़िया सोचने लगी कि बोली इतना एक ही बताने और बच्चे के भाई तू गुड़ मत खा करके, वो इतना बनाने के लिए 7 दिन क्यों चाहिए साधु को। तो ठीक है, लेकिन श्रद्धा थी तो बोले चलो बाबा जी ने बोला 7 दिन के बाद, तो 7 दिन के बाद अपने पोते को ले गए। तो फिर उन्होंने उस पोते को उस साधु ने अपनी पास बुलाया और उसके पीठ पे हाथ घुमाते हुए बोले कि बच्चे गुड़ खाना नहीं चाहिए, गुड़ खाने से दांत खराब होते हैं, भूख कम लगती है, तो गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बस इतना बोल के छोड़ दे। दादी सोचने लगी इतना बोलने के लिए 7 दिन आपको लगा। तो बोले क्या करूं, मैं भी बहुत गुड़ खाता था, मैं खुद खाया और उसको बोला कि मत खाओ, वो मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं 7 दिन खुद नहीं खाया, तब मैं जाके मैं उसको बोलने के लायक हूँ, पात्र हूँ कि भाई मत खा करता। तो उसको हम उचित शिक्षक कह सकते हैं कि जो स्वयं पहले नियम अपने जीवन में उतारे और फिर दूसरे को बता सके। और वही महाप्रभु बताते हैं कि आपने आचरी प्रभु जगते रसिका, कि खुद पहले आचरण करते हैं और फिर जगत दुनिया को शिक्षा देते हैं, और ऐसे शिक्षक को आचार्य कहा जाता है। कोई संस्कृत पंडित हो गए इसलिए उसको आचार्य नहीं कहते, बल्कि आचार्य यानी वो व्यक्ति जो आचिनोति यथा शास्त्रार्थम, कि जो शास्त्रों का अर्थ अपने जीवन में ढालने का प्रयास करता है, अपने शिक्षाओं के अनुसार जिसका जीवन चलता है उसको आचार्य कहते हैं, और ऐसे आचार्य को श्रेष्ठ कहा गया है। और ऐसा व्यक्ति जब किसी को कुछ बोलता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। न तो भगवद गीता में बड़ा बड़ा प्रवचन करते हैं और शाम को पार्टी में दिखाई देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं भारत में जो, अगर एक व्यक्ति को हमने देखा था महाराष्ट्र में एक जगह पर प्रोग्राम के लिए हम जाते थे हम लोग, तो हर रविवार में एक वहां पर राधा कृष्ण का मंदिर था, वो मंदिर में प्रोग्राम होता था क्योंकि इसका उनका खुद का मंदिर नहीं था वहां पर। तो उस मंदिर का पुजारी जो था ना, जैसे ही यहाँ पर जय राम माधव खत्म हो गया वो घंटा बजाना चालू कर देता था जोर जोर से, और अंदर आरती चालू कर देता था, और आरती का प्लेट लेके जाते समय ना ऐसे कोई भक्त बैठा हो ना जैसे कुत्ते को भगाते ना वैसे उनको बांट कर देता, आपका स्पर्श होगा मैं पवित्र हो जाऊंगा करके, और हाथ में थाली लेके जाता था, आरती विनती करके वापस आएगा, और 10 मिनट के बाद देखो गया तो वही व्यक्ति जींस टी शर्ट डाल के वही दरवाजे पर खड़ा पे सिगरेट फूंकते, जैसे धूप चलाते वैसे वहां पर अपना सिगरेट चलाते खड़ा रहता था। तो ऐसे आचरण से लोगों का, धार्मिक लोगों के ऊपर का विश्वास निकल जाता है, जो सही व्यक्ति है उसके ऊपर भी लोग फिर विश्वास नहीं करते। जैसे कहते हैं ना कि गीले लकड़ी के या सूखे लकड़ी के साथ गीला भी जल जाता है, या गीले के साथ सूखा भी जल जाता है, सूखे साथ गीला भी जल जाता है, वैसे हो जाता है कि चार चोरों के साथ एक आध प्रामाणिक व्यक्ति भी। तो इसलिए जो सही और योग्य व्यक्ति रहते हैं वो अपना आचरण किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है, चाहे उनको किसी भी स्थिति में अपना लो। जैसे प्रहलाद महाराज है, उनका हम जीवन देखते हैं, अगर आपको ऐसे बोला जाए तो अगर भगवान का नाम लोगे तो गला काट दूंगा, हो गया बिल्कुल नहीं लेंगे, गले से प्यार है हमको, भगवान से थोड़ी है। लेकिन प्रहलाद को कितना धमकाया और डरा नहीं, होना ठीक है आपको जो करना है करो, क्योंकि मेरा गला काटने के लिए भी शक्ति किसने दी आपको, भगवान ने, और मुझे उनका नाम लेने के लिए भी दी है, तो देखते है किसको शक्ति ज्यादा दी है करके। और उनका पूरा विश्वास था कि भगवान के नाम में ज्यादा शक्ति है, भगवान से भी भगवान के नाम में ज्यादा शक्ति है। कितने लोगों का विश्वास है, सबका विश्वास है, बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी जगह पे आया मैं। तो मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है, अतः नेता का उद्देश्य ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसी की पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यह साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। किसी का हम नेतृत्व करते हैं या किसी के ऊपर जब हम आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि जिसको आदेश दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी है। और इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, राजो न सस्यात् गुरो न सस्यात्, न मोचयेत समुपेत मृत्यु। जब तक पिता अपने को पिता नहीं कह सकता, माता माता नहीं कह सकती, गुरु गुरु नहीं कह सकता और राजा अपने को राजा नहीं कह सकता, जब तक वो अपने पर निर्भरित लोगों को मृत्यु से बचा नहीं सकता। अगर वो व्यक्ति मृत्यु से बचा सकता है तो वह सही तरह से किसी का पिता हो सकता है। यानी अगर आप किसी की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेते हो तो उसके नेता बनने के अधिकारी। जैसे किसी को पिता बनना है तो पैदा करने वाले को इस भौतिक जगत से बाहर निकालने का दायित्व आपका है। अगर आप नहीं निकाल सकते तो पिता नहीं, आप पिता बन ही नहीं सकते। तो फिर जैसे पशु समाज में होता है वैसा ही मानव समाज में हो जाएगा। चलो साल में एक बार बच्चे पैदा करना ही करते हैं, करके छोड़ दो। लेकिन पिता तब तक पिता नहीं बनता जब तक वो पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भरित संतानों को भगवत धाम न ले जाए। न मोचे समुपेत मृत्यु, जब तक वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से उनको न बचा। केवल पिता नहीं बल्कि माता भी। तो इनका दायित्व है कि अगर आप किसी के जन्म का कारण बनते हो तो निश्चित रूप से ऐसा कारण बनो कि वो वापस जन्म न ले यहाँ पे। यानी माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को भगवत भक्ति में लाना। तो उसी प्रकार से जो भी अपने ओर पर निर्भर है, जो आपके आदेशों का पालन करते हैं, उन सबको कोशिश करना चाहिए कि भगवान की भक्ति में लाभ है। अन्यथा फिर हम नेता बन के कुछ फायदा नहीं है। ये तो बताया जाता है कि अंधे यथांधे उपनीयमान, कि जिस प्रकार से एक अंधा है और 100 अंधों को लेके जा रहा है, कहाँ जाके गिरेंगे? तो हम सबकी वही हालत है। ऐसे अंधे लोगों को पकड़ के हम घूम रहे हैं उनके पीछे पीछे, कहाँ जाने वाले है? घुटना फूटने वाला है, किसी की कमर टूटने वाली है, किसी का कपाल फूटने वाला है। तो अगर इससे बचना है तो किसी जिसके पास शास्त्र चक्षु है, जिसके पास शास्त्रों का सिद्धांत के बारे में ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति के अगर हम पीछे लगे तो फिर हमारा उद्धार हो सकता है। और इसलिए कहते हैं यहाँ पे कि जब तक अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है तथा नैतिक और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित अगर हम हो तो ही इन सारे अपने आश्रितों को हम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटा सकते हैं, अन्यथा फायदा नहीं है। इसलिए महाप्रभु भी कहते थे कि जरा देखो तारक का कृष्ण उपदेश, हरे को कृष्ण उपदेश करना चाहिए लेकिन पहले खुद का जन्म सार्थक होना चाहिए। उसके जन्म सार्थक करी कोरी पर्व का, खुद गड्ढे में गिर रहा है और दूसरे को खींच रहा है आ जा करके, कैसे हो रहा है? तो पहले गड्ढे के बाहर आना चाहिए ना। और उसके लिए महत्वपूर्ण है साधुओं का संग। क्योंकि साधुओं के संग में ही भगवान की महत्ता हमें मालूम होती है। कई बार भगवान स्वयं बताते हैं लेकिन उसको समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी शुद्ध चीज को धारण करने के लिए पात्र भी शुद्ध होना चाहिए ना। तो जिसमें पहले से मिट्टी गिरी हो उसमें आप दूध भर के रख देंगे, दूध शुद्ध रहेगा? तो पहले पात्र शुद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार से भगवत संदेश को भी स्वीकार करने के लिए शुद्धता की आवश्यकता है, और वो शुद्धता प्राप्त होती है ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के संग प्राप्त करने से। तभी जाके फिर भगवान के जो शब्द है उनको हम समझ पाएंगे। जैसे भगवान यहाँ पे बताते हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान आवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथा पुत्र यानी अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं। जब भगवान भी स्वयं इस धरती पर अपनी लीला करने के लिए प्रकट होते हैं तो वे भी अपने आश्रम में कई कर्म निकला क्या करने की जरूरत है उनको, क्योंकि यहाँ पे स्वयं बताते कि मेरे लिए तो कुछ नियत कर्म नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मुझे करना ही पड़ेगा, जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। क्यों? उसका कारण उन्होंने ऑलरेडी बताया कि जिस प्रकार से मैं आश्रम करूंगा उसी प्रकार से फिर बाकी के लोग करेंगे, इसलिए मुझे यहां आने के पश्चात उचित आश्रम करना चाहिए। और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम करना है। भगवान किसी भी परिस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त पर उठ जाते हैं, उठ के अपना शौर कर्म करके उसके पश्चात संध्या में बैठ जाते थे, कहीं पे हवन करते थे, कहीं पे विग्रहों की पूजा करते थे स्वयं। ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी उनको, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम कर्म करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव रहता है। जैसे जब सतोगुण बढ़ जाता है तो अच्छा कार्य करते हैं, दान देते हैं, पूजा में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तो होटल में शाम को 50 रियाल लेके कैमरे होता है वो देखने के लिए जाते हैं। क्यों? रजोगुण बढ़ जाता है ना तब। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो कुछ नशीले पदार्थ है वो लेके फिर सो जाते हैं। ये गुण हमसे कर्म करवाते हैं, फिर भगवान के यहाँ पे आके कर्म करते हैं, वो भी गुणों के अतीत है क्या? नहीं, वो तो त्रिगुण अतीत, उनके अधीन सब गुण है, लेकिन लोक शिक्षा के लिए वे यहाँ पे आके कर्म कैसा करना ये बताते हैं। और ऐसा कर्म सिखाते हैं कि जिस कर्म के द्वारा हम सब इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले, और वही हमारे लिए उचित कर्म है। क्योंकि वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार से हुआ है, तमिम ईश्वराणाम परमं महेश्वरं तम देवतानां परम च दैवतम पतिनां पतिनां परम परस्तार विदां देव भुवनेश विद्यम न तस्य कारणं कारणं च विद्यते तस्माद् विदित्य च दृश्यते परास्य शक्तिर्विवधैः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है, सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है, अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर और सबों द्वारा आराध्य है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। उनका शरीर, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है, अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहु रूपिणी है, अतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में वे भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो शास्त्र के विरुद्ध है, और यही महत्वपूर्ण बात भगवान बताते हैं, और वही कार्य करते हैं जो शास्त्रों के द्वारा विहित है। ऐसे कर्म करने से ही मनुष्य की इस भौतिक जगत के दुखों से मुक्ति हो सकती है, और इसलिए वे फिर बताते हैं कि यदि यहम न वर्तेयम जातो कर्मण्य अति इंद्रतः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, क्योंकि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह यज्ञ ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान को हालांकि कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे करते हैं क्योंकि लोकाचार के लिए, लोक शिक्षा के लिए। अन्यथा उनको इस बोधी जगत में आके कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे वही कार्य करेगा जो गुणों से और अपने पिछले कर्मों से बंधा गया है वो, और इसलिए अर्जुन को भगवान बताते कि मैं कर्म करता हूं क्योंकि रीमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संस्कारस्य च कर्ता स्याम उपमय्य उपय्य न्याम इमाम प्रजा। यदि मैं नित्य कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो यहाँ पे विशेष करके भगवान बताते हैं वर्ण संकर के बारे में, क्योंकि वर्ण संकर यानी अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग कर देता है। किसी को जीवन प्राप्त होने के लिए कुछ हेतु ही नहीं होगा, अगर किसी के टाइम पास के लिए कोई पैदा हुआ होगा तो फिर वह समाज के लिए क्या अच्छा करेगा। इसलिए वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम स्वीकार लेता है तो उसका हर एक कार्य समाज के लिए भी आवश्यक बन जाता है। अगर गर्भदान जैसे संस्कार न किए जाए, जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि वर्ण संकर से जो अवांछित उत्पत्ति होती है, हालांकि नहीं चाहिए लेकिन क्या करे, गलती से हो गया, तो जो गलती से हुआ है वो क्या करेगा फिर पैदा होकर? तो गलतियां ही करते रहेगा और उसकी गलतियां पूरे समाज को भुगतनी पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग कर देता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाएगी। और इसीलिए शास्त्र में अलग अलग विधि विधान है, उनका जब हम पालन करेंगे तो शांतिमय समाज की स्थापना हो सकती है। और जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवाओं के पिता है और यदि यह जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का रहता है। इसीलिए भगवान भी विधि विधानों का अनादर नहीं करते हैं बल्कि उनका आचरण करते हैं। भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पदचिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे भगवान जो भी कार्य करते हैं अगर उसका हम अनुकरण करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से गड्ढे में गिर जाएंगे, लेकिन अनुसरण करेंगे तो गिरे हुए गड्ढे में से बाहर निकल सकते। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं है। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, कर सकते हैं? कोई बोलेगा अरे भगवान ने बहुत सारे गोपियों के पीछे थे तो हम भी वैसा ही करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सब अलग अलग साइज के सैंडल मुंह पे शरीर पे उठेंगे, लेकिन गोपियों ने जिस प्रकार भगवान से प्रेम किया था, उनको जिस प्रकार से अपना स्वामी माना था और उनके आनंद के केवल एक ही अगर वे विषय वस्तु थे, अगर उस स्वरूप से अगर हम भगवान को देखेंगे कि केवल भगवान ही हमारे मत प्राण नाथस्तु स एव ना परः, इस भाव से अगर हम भगवान की तरफ जाएंगे तो भगवान भी हमें उसी प्रकार से स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें अनुकरण नहीं करना है बल्कि अनुसरण करना है, हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। नहि तत्समाचरजात मनसापि हनिश्वरः विनश्यत्याचरणमौढ्याद्यरुद्रो अब्धिजं विषम् ईश्वरानां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्वचयोपयुक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी से अनुकरण में विष का समुद्र पी लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ज्यादा करके भारत में देखते जो होली रहते हैं फिर रंग के साथ भांग भी पी लेते हैं, क्यों? बोले शिवजी को प्रिय है, शिवजी पीते हैं। कई लोग गांजा भी फूंकते हैं, क्यों? हम शिवजी के उपासक है, सब चलता है करते। तो शिवजी ने विष भी पिया था, पियो ना फिर, तो पिएगा नहीं पिएगा? उतना ही करते जिसने में अपना स्वार्थ हो, जिसने सेवा हो वो कार्य करने की इच्छा नहीं हो। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इन सारे भगवान के भक्तों का आदेशों का पालन कर सकते हैं लेकिन उनका अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए संभव नहीं है। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाला हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा, कोमा में चला जाएगा 10 दिन तक। किंतु वे यह भूल जाते हैं शिवजी के उनके चरण भक्त है जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करता है, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते और ना ही जब 1 महीने के थे तो पूतना जैसे राक्षसी को मार सकते हैं। बिल्कुल अगर कोई कहे कि जैसे एक है पागल अभी भी भारत में जो अपने आप को भगवान ही कहता है, जब सुदामा मेरे घर आया था द्वापर युग में तब मैंने उसके चरण धोए थे, इसलिए उस व्यक्ति ने रामेश्वर में 108 ब्राह्मणों के पैर धोए और पानी पिए और वही भगवान को आज कैंसर हो गया। तो ऐसे छद्म लोग भी है जो अपने आप को भगवान मानते। फिर बताते हैं कि अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिसे भगवान की शक्ति नहीं होती। तो यह जानना हमें आवश्यक है कि कार्य हमें वही करे कि जिस कार्य के द्वारा हम भगवान के पास पहुंचे, बल्कि ऐसा कार्य न करेंगे और भगवान से दूर हो जाए। और जब तक इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा है तो निश्चित रूप से समझ लो कि तब तक भगवान से दूर ही हो। और जब इन विषय आसक्तियों की विषयों के प्रति आसक्ति और इंद्रियों की संतुष्टता के प्रति जो हमारी आसक्ति है ये नष्ट हो जाएगी तो सोचना चाहिए कि हम अभी भगवान के पास जा रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे मालूम पड़ेगा हमें कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हो भगवान उसे प्रसन्न है या नहीं है। तो एक ही तरीका है वो जानने का, और वो है कि भगवत नाम में हमारी रुचि है या नहीं है। अगर रुचि है तो वो बढ़ रही है घट रही है? अगर बढ़ रही है तो समझना है कि हम प्रगति कर रहे हैं, और घट रही है तो समझना है कि गड्ढे में और फंसते जा रहे हैं। तो बहुत आसान तरीका अपने आप को जज करने का, अपने आप की कसौटी देखने का कि हम कहां तक पहुंचे हैं, यही एक हमारे लिए बैरामीटर है जिससे हम जान सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। भगवत गीता की जय। श्रीमद् प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न है?
एक छोटा सा प्रश्न,
प्रभु जी यहाँ पर बैठे हैं इनसे पूछे।
तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब जप कर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी जप में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है।
कई बार आप ऐसा होता है कि आप जप कर लेते हैं, कई बार ही हर रोज करते हैं?
जप करते समय कई बार ऐसा होता है कि बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, यानी कि 16 से 18 से 22 बढ़ते जाने का फिर मन चढ़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जप करते समय मन खेत नहीं रहता है, तो 16 भी करने का दिल नहीं रहता, चलो आज रात में कुछ शाम को कर लेते हैं, तो अभी नहीं, अभी थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है बाद में कर लेते हैं, ऐसा होने पर क्या सोचा जा सकता
है? सोचा जा सकता नहीं, उस समय करना ही है। जिस दिन लगे है कि भैया आज के 16 नहीं होगी उस दिन 20 करना ही है किसी का, क्योंकि मन का स्वभाव है कि जिसके द्वारा आप उसको नियंत्रित करना चाहते हो उससे वो आपको छोड़ना चाहता है। कहा जाता है कि मन ही मनुष्य मनो एवं मनुष्यानां कारणं मोक्ष बंधनं। बंधे विषय संगात मुक्त निर्विषम, मन ही व्यक्ति के बंधन का तथा मुक्ति का कारण है। तो कभी कभी भगवत भक्ति में मन लग जाता है क्योंकि आजू बाजू में भक्तों का संग रहता है, कुछ अच्छी चीजें पढ़ी होती है हमने, कुछ अच्छी भक्तों की सेवा की होती है, तो उसका वो फल रहता है कि उसके कारण या उनकी कृपा के कारण थोड़ा बहुत भगवत भक्ति में भावना बनी रहती है। लेकिन थोड़ा उनका संग छोड़ जाता है या किसी भक्त के प्रति वो अपराध कर देते हैं या जाने अनजाने में भगवान के प्रति कुछ अपराध कर देते हैं, तो फिर जप में वगैरह मन नहीं लगता है या कभी कभी विषय वासनाओं के प्रति मन आसक्त हो जाता है तो भी जप में रुचि नहीं आती। तो ऐसे समय पे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, देखो भैया हमारा रिजल्ट तो पहले से ही लगा हुआ है कि हम फेल है, क्यों टेस्ट ले रहे हो हमारे, छोड़ दो ना, और उनके ऊपर छोड़ देने का, भाई तुम्हारे ऊपर हम छोड़ देते हैं, छोड़ देना है ना, जब करना नहीं छोड़ना है, उनके ऊपर पूरा भार सौंप देना है कि भाई मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप ही मुझे बचाओ, दूसरा कोई बचाने वाला है यहाँ पर, केवल एक ही लाल, कोई माइकल लाल नहीं बचा सकता, केवल एक ही लाल बचा सकता है, कौन है वो, नंदलाल, नंदलाल बचा सकता है।
तो यहाँ पर बहुत नया भक्त है,
क्यों नया है,
कृपा करके जरा दो मिनट के लिए बताएंगे जो नाम का क्यों महत्व है, क्यों बोले जब मुझे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए।
अच्छा, कृष्ण कली काल है, नाम रूप है कृष्ण अवतार, आप लोग बताते हैं कि कली काल में भगवान का अवतार कौन से रूप में है,
नाम,
उनके नाम के रूप में है, इसलिए नाम जप करना कलियुग के लिए बहुत आवश्यक है। देखो कलियुग में पूजा नहीं कर सकते हम, कर सकते हैं क्या, थोड़ा सोचो, जैसे पहले के जमाने में पूजा होती थी, लोग छह छह बार मंदिर जाते थे, दिन में छह बार जाते थे, अब छह दिन में एक बार आने के लिए भी सोचते हैं यार, पिछले हफ्ते तो गया था, अभी क्या जाना है, अगले हफ्ते जाएंगे। कई बादल तो ऐसे होते हैं कि इंडिया से आने के बाद एक बार आते हैं और इंडिया वापस जाने के लिए आते हैं, जब आते हैं इंडिया से वापस आने के बाद आते हैं कि कुछ लाया होता है, किसी को कुछ देना होता है, वो यही मिलेगा करके यहाँ देने के लिए आते हैं, और इंडिया जाना है तब आते हैं, क्यों, किसी का कुछ लेके जाना है तो ले जाने के लिए, बाकी समय भगवान नहीं दिखाई देता। बल्कि हमें साधुओं का संग हर समय करना है, और कलयुग में ये बहुत कठिन है, तो हर रोज तो मंदिर में नहीं जा सकते, विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, विग्रहों की सेवा करना है बहुत शुद्धता के नियम है, उतने भी हम पालन नहीं कर सकते, यहाँ पे दिन में तीन बार नहाना है बोला तुम पीटेंगे लोग यहाँ से, पानी इतना महंगा, फिर ध्यान लगा के बैठना है वो भी बैठ नहीं सकते क्योंकि मन इतना इतना मन उपद्रव देता है हमारा, अभी यहाँ पे बैठे लेकिन कई बार गांव पे जाके भी आया होगा, अभी आया होगा ना, 10 साल पहले किसी को 10 रुपए दिया वो अभी याद आता है, कोई जरूरत नहीं उसकी, तो ऐसे मन की अवस्था है तो ध्यान कर पाओगे, बिल्कुल नहीं होगा। अभी इतना मैं जोर से बोल भी रहा हूं तो कई लोग है जो सुखात्मा है बैठे बैठे नींद मार रहे हैं, तो फिर ध्यान में बैठोगे तो क्या ध्यान कर पाओगे या नींद लोगे अच्छी तरह से, तो कलयुग के लिए यह मार्ग नहीं है, कलयुग के लिए सबसे आसान तरीका दिया है, क्या है वो, कहीं पे भी हो किसी भी स्थिति में हो, चाहे नहाए हो या नहीं नहाए हो, सोए हो या उठ के बैठे हो, चल रहे हो या भाग रहे हो, लेकिन एक काम कर सकते हो, भगवान का स्मरण तो कर सकते हो ना, भगवान का नाम तो ले सकते हो। तो कलयुग के जीवों की दुखद परिस्थिति देखकर, क्योंकि वो किसी भी नियम का पालन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आपको मालूम नहीं है कि आगे बाजू में बैठा हुआ आदमी नहाया हुआ या नहीं हुआ है, जब इस ऐसे देश में काम करोगे तो मालूम पड़ेगा कुछ। हमारे साइड पे एक इंजीनियर था, 5 बजे साइड पे पहुंचना है तो बराबर 4:57 को उठता था, राश नहीं कोच नहीं, बाहर से हॉर्न गाड़ी का मार रहे, उठेगा वैसे ही सेंट मारेगा, टी शर्ट डालेगा सीधा साइड पे, और फिर पूरा काम होने के बाद शाम को जब 7:30 बजे वापस पहुंचता था अगर वो भी किसी ने गलती से रूममेट ने बोला यार बास मारे ना ले तो ना आएगा ऐसी स्थिति। ये भी पढ़े लो ये लोगों का मैं बता रहा हूँ, बाकी का तो छोड़ ही दो, ये हाल है। तो फिर ऐसी अशुद्ध अवस्था में दूसरा कुछ वैदिक कार्य कर सकते हैं नहीं, लेकिन एक चीज है भगवान का नाम है जो आप ले सकते हैं किसी भी स्थिति में, उसके लिए कुछ विधि विधान नहीं है। क्योंकि कलियुग के जीव ऐसे कि उनको कुछ नियम नहीं चाहिए, कोई नियम बताओगे तो 100 किलोमीटर आपसे दूर भागे। खास करके भारत में हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, सबसे ज्यादा कहीं नहीं दिखा वही थूक देते हैं लोग। तो कलियुग में बोला गया है कि जो ना बोला जाए वो सबसे ज्यादा पहले करेंगे। जैसे आपको कहा जाए कि दरवाजा खोलते ही बाई तरफ मत देखना, तो जो जो व्यक्ति यहाँ से बाहर जाएगा वो पहले बाई तरफ देखेगा, क्यों ना देखने बल्कि बोला इसलिए। क्योंकि ये मन का और खास करके इस कलयुग में पैदा हुए लोगों का लक्षण है, जो ना बोले वो ही करेगा। तो फिर ऐसे लोगों के लिए सबसे आसान तरीका भगवान ने दे दिया कि भैया आप कुछ मत करो, केवल मेरा नाम लो, जहाँ पे बैठे हो जैसे बैठे हो जिस स्थिति में हो क्या करो
नाम लो।
क्या हरे कृष्ण नाम ही भजो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, भुवन मंगल हरि नाम की जय।